ओम शांति। अभी जो हमारा सेशन है तो हमारे बीच में डॉक्टर स्वपन गुप्ता जी हैं। ही इज एसोसिएट प्रोफेसर इन न्यूरोलॉजी एंड रजिस्टर एकेडमिक्स इन जीबी पंत पीजीआईएमएस। और बहुत ज्यादा इंट्रोडक्शन इन्होंने देने के लिए मना किया है। अभी मैं आई वुड कॉल अपॉन द स्टेज डॉक्टर करण सिंह यादव जयपुर। ही इज एक्स एमएलए, एक्स एमपी, एक्स मेडिकल सुपरिटेंडेंट एसएमएस हॉस्पिटल। प्लीज गिव अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर द चेयरपर्सन एंड द स्पीकर। एंड आई वुड कॉल अपॉन द स्टेज डॉक्टर संध्या मनोहर फ्रॉम हैदराबाद। शी इज एचओडी अपोलो इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड रिसर्च। एंड टूडेज टॉपिक इज thought management for positive health. Before we begin with the topic, I would request Brahma Kumari's sister to welcome the speaker and the chairpersons with badge and bouquet. Brahma Kumari's sister se anurodh hai. Please give a big round of applause. Taaliyan bajate rahein. Aaj morning mein bhi bataya Dr. Rama ne ke acupressure hota hai hamare points ka. Please जोरदार तालियां बजाते हुए स्वागत करेंगे हमारे चेयरपर्सन डॉक्टर करण सिंह यादव। ही विल ज्वाइन अस वेरी सून।
ओम शांति। नमस्कार। अपने इतने सारे डॉक्टर्स फ्रेंड्स को और भाइयों को देखकर और बहनों को देखकर हमें बहुत खुशी है। और आज हम थॉट मैनेजमेंट पर थोड़ा बात करने वाले हैं आपसे। ये केवल एक लेक्चर नहीं होगा, ये एक एक्सपीरियंस शेयरिंग होगा। जब भी हम मेडिकल स्कूल में कॉलेज में पढ़ते थे तो सबसे ज़्यादा हम सीखते थे डायरेक्ट एक्सपीरियंस से। वही चीज़ आज हम करने वाले हैं। तो सब रेडी हैं एवरीबॉडी? थॉट मैनेजमेंट फॉर पॉजिटिव हेल्थ। थॉट्स का हमारी हेल्थ पर क्या इफेक्ट आता है, स्टोरीज के माध्यम से देखते हैं, रियल लाइफ एग्जाम्पल्स से। एक पेशेंट है जिनको पैराप्लीजिया था। 4 ईयर्स से वो इस कंडीशन में थे, चल नहीं पाते थे। बहुत जगह दिखाया, कोई फायदा नहीं हुआ। एक बार वो हमारे हॉस्पिटल में आए, हमने उनको एडमिट किया। सभी ने कहा ये ठीक नहीं हो सकते। हमने इस चैलेंज को लिया और 7 डेज में उनका ये स्टेटस था, वो खुद अपने पैरों पर चलने लगे। जब हमने ये केस वापस प्रेजेंट किया तो द चीफ ऑफ सर्विसेज सेड कि आपने क्या मिराकल कर दिया। हमने कहा वो मिराकल था पीबी। दिस लेडी, इनको हैंड ट्रेमर्स थे, हाथ कांपते थे 2 साल से। हाउसवाइफ थी, नई नई शादी हुई थी। अगेन पीबी ट्रीटमेंट के बाद कुछ ही दिनों में ये उनका वीडियो है एंड उनका ट्रेमर काफी हद तक ठीक हो गया। दिस गर्ल 10th क्लास स्टूडेंट, हेमिफेशियल स्पैज़म के साथ हमारे पास डायग्नोसिस आए, ठीक नहीं हो रहे थे। ऑल केसेस वर रिफ्रैक्टरी रेसिस्टेंट केसेस। राइट साइड उनका फेस कॉन्ट्रैक्ट करता था।
आंख बंद करो जोर से।
पीबी के बाद अगेन ठीक हो गया। दिस लेडी वेरी इंटरेस्टिंग, शी वॉज क्वाइट एजुकेटेड। उनका प्रॉब्लम था 6 महीने से ये ट्रेमर होते थे जॉ में, बोलने में दिक्कत होती थी।
कितने पढ़े लिखे हैं आप?
इनको भी अगेन ठीक कहीं से नहीं हो रहे थे। बोटॉक्स भी दिया लेकिन जब हमने पीबी दिया तो शी गॉट फाइन। राइट। अब सभी एग्जाम्पल्स ऐसे थे जो रेजिस्टेंट केसेस थे लेकिन एक पीबी ट्रीटमेंट से सभी ठीक हो गए। एनी केसेस ये पीबी क्या था? यू आर राइट, प्लेसिबो। तो इन सभी को हमने प्लेसिबो दिया। प्रॉब्लम क्या था? जो फर्स्ट पर्सन थे 4 साल पहले जब कोविड हुआ, लॉट्स ऑफ फाइनेंशियल प्रेशर स्ट्रेस, इट रिजल्टेड इन दिस थिंग। उनके सारे टेस्ट नॉर्मल थे। सेकेंड लेडी, उनकी नई नई शादी हुई, शादी का स्ट्रेस, प्रॉब्लम्स, हाथ कांपने लगा। थर्ड गर्ल, एग्जाम प्रेशर, पीयर प्रेशर, चेहरे पर कॉन्ट्रैक्शन होने लगी। एंड फोर्थ लेडी, शादी थी घर में किसकी, ब्रदर इन लॉ की, एक नया पर्सन घर में आया, मोनोपोली खत्म हुई, ये प्रॉब्लम आई। डॉक्टर्स वर ट्रीटिंग ऑर्गेनिसिटी जो उनमें थी ही नहीं, ऑल वर हैविंग फंक्शनल या जिनको हम कहते हैं साइकोसोमैटिक इलनेसेस। प्रॉब्लम कहाँ थी, यहां पर पुअर थॉट्स लीडिंग टू पुअर हेल्थ। यू ऑल एग्री विथ मी, देखते हैं हम ऐसे पेशेंट्स एंड ये चीजें बढ़ रही हैं फॉर सिंपल रीजंस। आज के समय में स्ट्रेस, लाइफ चैलेंजेस, चाहे वो एजुकेटेड हो चाहे नॉन एजुकेटेड हो, चाहे वो अपर क्लास हो चाहे लोअर क्लास हो, चाहे वो किसी भी कास्ट, रिलीजन, क्रीड का हो, हर जगह ये प्रॉब्लम्स बढ़ रही हैं। सो मच सो ऑलमोस्ट 40-50% ओपीडी विजिट्स ये पेशेंट्स के होते हैं। आपने भी एनकाउंटर किया होगा, खुद भी और पेशेंट्स में भी, जब स्ट्रेस ज्यादा होता है एग्जाम का, इंटरव्यू का, तो स्टमक में प्रॉब्लम्स आती हैं, इनडाइजेशन, हार्ट बर्न्स, कुछ भी जिसको हम कहते हैं इरिटेबल बावल सिंड्रोम। टेस्ट सारे नॉर्मल होते हैं, ऑल टेस्ट आर नॉर्मल, लेकिन साइकिक प्रॉब्लम होने से पैनिक अटैक्स, आज बहुत सारे ऐसे हम लोगों को देखते हैं, चक्कर आना, घबराहट होना, हैंड शिवर करना। पूछो तो मोस्टली जब वो स्ट्रेस एंग्जाइटी में होते हैं तब ज्यादा होता है। दे गो टू कार्डियोलॉजिस्ट, दे गो टू न्यूरोलॉजिस्ट, दे गो टू गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ होती है अल्टीमेटली, यहां पर, जिसको हम कहते हैं पैनिक अटैक्स, साइकोसोमैटिक इलनेसेस। क्वेश्चन ये है, इतने सारे लोगों में से कुछ ही सबसेट के लोगों को ये प्रॉब्लम्स क्यों होती हैं? चैलेंजेस तो सबके सामने हैं। टेंथ क्लास में बहुत सारे बच्चे होते हैं, कोविड सबके लिए आया, शादी सबके घर में होती है, सबकी होती है, तो इन्हीं सबसेट लोगों को क्यों होता है, दैट इज द बेसिक क्वेश्चन। अभी साइंस हम बोलते हैं दिस कॉन्सेप्ट ऑफ इम्पेयर्ड सेंस ऑफ एजेंसी, इट्स एक्चुअली वेरी मच स्पिरिचुअल कॉन्सेप्ट इन अ मॉडर्न साइंटिफिक लैंग्वेज। ये सेंस ऑफ एजेंसी क्या है? सेंस ऑफ एजेंसी, एक ये आर्टिकल पब्लिश हुआ 2017 में नेचर रिव्यू न्यूरोसाइंसेस, जिसमें बहुत अच्छे से उन्होंने एक्सप्लेन किया, एक्सपीरियंस ऑफ कंट्रोलिंग वन्स ओन एक्शंस। कुछ एक यहां पर कुछ एक पावर है जो एक्सपीरियंस कर रही है और वो कंट्रोल कर रही है बॉडी को, समथिंग लाइक अ माइंड। व्हेन द कंट्रोल ओवर द बॉडी इज लॉस्ट बाय द माइंड, इट इज नोन एज लॉस ऑफ सेंस ऑफ एजेंसी। एजेंसी मींस आई हैव कंट्रोल ओवर, एंड व्हेन इट इज लॉस्ट देन दीज पेशेंट्स मैनिफेस्ट लाइक दिस। एंड माइंड इट, ये फैक्टिशियस नहीं था। एक क्रिमिनल जो होता है, जो मेलिंगरिंग करता है, अपनी इलनेस को फेन करता है जेल से बाहर आने के लिए, उसके ब्रेन के जब फंक्शनल एमआरआई की गई और जब इनके ब्रेन को स्टडी किया गया, तो देखा गया ये अनकॉन्शियसली ऐसा हो रहा था, उसकी मेलिंगरिंग से अलग चीज थी। तो इसीलिए इन चीजों का नाम अब साइकिक वी डोंट यूज द टर्म, वी यूज द टर्म फंक्शनल। ये पूरी थियोरी है, उस पर हम नहीं जाएंगे, लेकिन समझने की बात यह है कि माइंड कैसे बॉडी को कंट्रोल करता है, जब वो लॉस्ट हो जाता है, खत्म हो जाता है, तो बॉडी कैसे अपने आप ऑटोनॉमसली रिएक्ट करती है। और ये लाइन देखिए, दिस सेंस ऑफ एजेंसी इज अ मेंटल एंड न्यूरल स्टेट, इट्स अ स्टेट, ये एक स्थिति है। उस स्थिति क्या है, जो भी यहां पे आप सीख रहे हैं, जिसको स्पिरिचुअल वर्ल्ड में कहा आत्मिक स्थिति। जब आत्मिक स्थिति डाउन होती है, माइंड की पावर कम होती है, तो क्या होता है, साइकोपैथोलॉजी होती है, और उससे हमारी जो सोसाइटी में हमें रोल करने होते हैं एक्चुअली में, वो इम्पेयर हो जाते हैं। कैसे स्पिरिचुअलिटी मॉडर्न साइंस में ट्रांसलेट हो रहा है। प्लेसिबो क्या है? पॉजिटिव थिंकिंग फॉर पॉजिटिव हेल्थ। इन लोगों को हमने कैसे ठीक किया? फॉर एग्जाम्पल, जो फर्स्ट पेशेंट थे जिनको लेग्स में प्रॉब्लम था, हमने उनका नर्व कंडक्शन स्टडीज किया, और आप जानते हैं जब नर्व कंडक्शन स्टडी करते हैं तो नर्व स्टिमुलेट करते हैं, मसल कॉन्ट्रैक्ट होता है, हमने उनको कहा, देखो आपका मसल कंट्रैक्ट कर रहा है, हिल रहा है ना? उन्होंने कहा हाँ हिल रहा है। नेक्स्ट डे जब हम राउंड पर गए तो हमने अपने सीनियर रेजिडेंट से कहा, देखो कल आपने इनको वो मेडिसिन दिया था ना, और साथ में नर्व कंडक्शन स्टिमुलेशन दिया था, तो इनके नर्व्स में स्ट्रेंथ आई होगी, आज इनका फुट मूव करेगा। एक्चुअली में सुन कौन रहा था? पेशेंट। प्लेसिबो, पॉजिटिव थिंकिंग, इट हेल्प्ड हिम मूविंग हिज लिम्ब्स, उसका फुट मूव करने लगा। डे बाय डे जब हम उनको कहते थे आपकी लेग्स और मूव करती जाएंगी, वो मूव करती गई करती गई। फर्क क्या था? बाकी डॉक्टर्स जब कह रहे थे आप ठीक नहीं हो सकते, इट वॉज री इन्फोर्सिंग नेगेटिव थॉट्स, यहां पर वी वर इन्फोर्सिंग पॉजिटिव थॉट्स। तो ये जो मेडिसिन हम दे रहे थे जिसमें मल्टी वाइटामिन्स थे, लेकिन पेशेंट को क्या बताया था? ये आपके ऊपर बहुत काम करेंगी। जो स्टिमुलेशन दे रहे थे पेशेंट के लिए, वो एक तरह से उसको पावर दे रहा था, उसके माइंड को जॉयफुल हैप्पी बना रहा था। तो ये प्लेसिबो काम कर रहा था थॉट्स पर। वो मेडिसिन और वो इंस्ट्रूमेंट्स, वो एनसीवी नर्व कंडक्शंस, वो तो केवल एक डिस्गाइज थे। और एक्चुअली ये केवल एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट नहीं है, इट हैज अ साइंटिफिक बेसिस। जब हम किसी को प्लेसिबो देते हैं तो उसमें ब्रेन के अंदर पॉजिटिव न्यूरो हॉर्मोन्स रिलीज होते हैं जो एंड ऑर्गन्स पर पॉजिटिव इफेक्ट डालते हैं। पॉजिटिव साइकिक, पॉजिटिव हेल्थ। जो यहां पर रेडियोलॉजिस्ट होंगे वो इस डायग्राम को समझ पाएंगे। प्लेसिबो से देखा गया कि हमारे ब्रेन के जो इमोशनल एरियाज हैं, न्यूक्लियस एकम्बंस, एंटीरियर सिंगुलेट, इंसुला, ये पॉजिटिवली मॉड्यूलेट होते हैं, और वो मॉड्यूलेशन से हमारे ब्रेन के अंदर न्यूरो हॉर्मोन्स पॉजिटिव रिलीज होते हैं जो रिकवरी में हेल्प करते हैं। थॉट्स, फंक्शनल डिसऑर्डर्स में तो समझेंगे कि साइकिक को ठीक किया वो भी ठीक हो गए, लेकिन ऑर्गेनिक प्रॉब्लम्स में क्या उसमें भी काम करते हैं? किसी ने हमसे सवाल पूछा, क्या ये ऑर्गेनिक डिसऑर्डर्स में भी इनका रोल है? स्टोरी ऑफ मल्टीपल स्क्लेरोसिस। यूएस में आज से 7-8 ईयर्स बैक नटालीजुमैब एक मल्टीपल स्क्लेरोसिस में ड्रग दी जाती है जिसका ट्रायल शुरू हुआ। तो ट्रायल में एनरोल किया गया, देर वॉज अ यंग लेडी हु वॉज अ सेलिब्रिटी अराउंड 23 ईयर्स ऑफ एज। उसको हर साल 4-5 अटैक होते थे मल्टीपल स्क्लेरोसिस के, वेरी डिसेबलिंग, कोई मेडिसिन पर काम नहीं कर रही थी। सो शी डिसाइडेड टू एनरोल इन द ट्रायल। फॉर नेक्स्ट 5 ईयर्स टिल द ट्रायल वेंट ऑन शी वॉज ऑल फाइन, नॉट इवन अ सिंगल अटैक, शी वॉज वेरी हैप्पी। 5 ईयर्स लेटर ट्रायल वॉज withheld, medicines were stopped. She said to the company, how can you stop my medicine? I am getting better with medicines. The company said, we are bound by law, right? She went to the court. The case went to the highest court. Now there was a dilemma. Ethics, patient life versus law, company law. Court said, nothing is above life, you have to give the medicine. When company opened the documents, she was actually receiving placebo. She was in the placebo arm. It's the power of mind. I still remember when I was in second year MBBS, while reading our clinical book, Hutchison, Harrison, there is a case report. There was a patient of paraplegia, 7 years, on bed, spinal cord injury. There was a fire in the house, nobody around. He shouted, he yelled, nobody came up, he ran away. He actually ran away. Power of the mind. More side effects of medicines with increased awareness. अभी बहुत मेडिको लीगल इश्यूज होते हैं तो हमें हर पेशेंट को उसके साइड इफेक्ट्स बताने पड़ते हैं मेडिसिन के, आपको ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, होता है ना ऐसा? क्या आपने भी ऑब्जर्व किया है कि उन पेशेंट्स को ज्यादा रिपोर्ट करते हैं? जब आप उनको साइड इफेक्ट्स बताते हैं दे रिपोर्ट इट मोर ऑफन। क्यों? क्यों पहले के लोग कम रिपोर्ट? बिकॉज नाउ दे आर अवेयर। उनकी साइकिक क्या काम कर रही है? मुझे ये हो जाएगा, मुझे ये हो सकता है। नाउ देयर इज अ डिलेमा वेदर टू टेल और नॉट, बट द क्रक्स इज आप उनको इस तरीके से बताइए कि आपका मेडिको लीगल भी नहीं बने और उनके साइड इफेक्ट्स भी ना बढ़े। दैट्स एन आर्ट। सो उसका इंपैक्ट ऑर्गेनिक डिजीज में भी होता है, स्ट्रेस एंड हेल्थ. हम पेशेंट से थोड़ा सा शिफ्ट गियर करते हैं टुवर्ड्स डॉक्टर्स. टॉपिक है ना लीडिंग हेल्थ केयर थ्रू सेल्फ केयर. सभी को ये इंफॉर्मेशन पता है, 3 डेथ्स, यंग डॉक्टर्स वेरी क्वालिफाइड इन लास्ट 2 ईयर्स. रीजन साइटिस इज लॉन्ग स्ट्रेसफुल आवर्स. हमने इस चीज को एक्सेप्ट तो कर लिया है, बट आर वी डूइंग समथिंग अबाउट इट? रीजन साइटेड इज कि जब बहुत स्ट्रेस होता है तो ब्रेन में एक हार्मोन निकलता है कॉर्टिसोल. कॉर्टिसोल आपके ब्लड शुगर लेवल्स को बढ़ाता है, हाइपरटेंशन को बढ़ाता है, कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है, एंड इट प्रीडिस्पोजेस यू टू स्ट्रोक एंड हार्ट अटैक्स. साथ साथ वो आपकी मेंटल हेल्थ को भी किल करता है. डॉक्टर वेंडी सुजुकी ऑफ न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी, ये रिसेंट स्टडीज है, उन्होंने देखा कि जब स्ट्रेस और एंग्जाइटी लॉन्ग टर्म रहता है, इट डिस्ट्रॉयज पार्ट ऑफ योर ब्रेन विच इज हिप्पोकैम्पस एंड प्रीफ्रॉन्टल कॉर्टेक्स. हिप्पोकैम्पस फॉर मेमोरी, प्रीफ्रॉन्टल कॉर्टेक्स फॉर जजमेंट. आपकी कॉग्निटिव एबिलिटीज भी कम होती हैं, बट वी हैव एक्सेप्टेड इट एक्चुअली. एंड व्हाई दिस इज हैपन्स, वेरी सिंपल. आई विल जस्ट गिव यू दिस वेरी सिंपल डायग्राम. यू नो दिस इज प्रीफ्रॉन्टल कॉर्टेक्स विच इज लॉजिक ब्रेन. हेयर इज अमाइग्डाला विच इज द इमोशनल ब्रेन. ये दोनों का बहुत गहरा कनेक्शन है. इट सेज इमोशंस हैव अ वेरी लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट ऑन लॉजिक. व्हेन अमाइग्डाला इज ओवर एक्टिव, व्हेन इमोशंस आर ओवर एक्टिव और दे आर वेरी नेगेटिव, इट रिप्रेसेस प्रीफ्रॉन्टल कॉर्टेक्स. ये खुद भी हमने अनुभव किया है. जब हम बहुत स्ट्रेस में होते हैं या बहुत दुखी होते हैं तो हम क्या कहते हैं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, या हम गलत डिसीजन ले लेते हैं. क्यों ऐसा होता है? क्योंकि इमोशनल माइंड जब नेगेटिव होता है वो आपके प्रीफ्रॉन्टल कॉर्टेक्स, जो जजमेंट इनसाइट इसके लिए क्रिटिकल इवैल्यूएशन के लिए इंपॉर्टेंट है, वो भी सप्रेस हो जाता है. डिड यू नो दैट? और ये जो 5 वाइसेस जो स्पिरिचुअलिटी में कहे गए, लस्ट, एंगर, ग्रीड, अटैचमेंट एंड ईगो, आज किस में नहीं है? एंड दैट्स वाई हम कहते हैं आज लोगों में कॉमन सेंस रही नहीं है. कैसे रहेगी? ये नेगेटिव है, इसको काम करने नहीं दे रहा है, ये भी नेगेटिव हो रहा है. एंड दिस वॉज डिस्कवर्ड बाय डॉक्टर डियागो पिज़ागली फ्रॉम हार्वर्ड यूनिवर्सिटी. और उसके बाद एक शुरू होता है एक साइकिल ऑफ नेगेटिव थॉट्स विच इज नोन एज रूमिनेशन. रूमिनेशन एक्चुअली मीन्स व्हेन अ काउ ब्रिंग्स बैक द फूड इन इट्स माउथ और उसको वो रूमिनेट करती है. सेम वे हमारा जब इमोशनल माइंड इन वाइसेस से अफेक्ट होता है तो ये लॉजिकल माइंड नेगेटिव थिंकिंग करता है. आज पता है दुनिया में सबसे बड़ी बीमारी डायबिटीज भी नहीं है, कैंसर भी नहीं है, इट्स नेगेटिव थिंकिंग. डू यू एग्री विद मी? एवरीबडी इज अफेक्टेड. हम कहते हैं क्यों? क्योंकि वाइसेस यहां अटैक कर रहे हैं. रूट को पकड़ना होगा. अब क्वेश्चन ये है, आपने ये तो बताया कि ये इमोशनल, लेकिन हम क्या करें? सिचुएशंस इतनी खराब हैं, ये तो होगा ही ना. गुस्सा नहीं आएगा क्या कोई आपका काम नहीं करे, आपका काम बिगाड़े तो? क्या अटैचमेंट नहीं होना चाहिए एक दूसरे के लिए? कोई मेरा लव वंस को कुछ हो जाए तो मुझे रोना नहीं आएगा क्या? क्या ईगोइस्टिक होना गलत बात है? पता भी है फिर भी हो जाता है. क्यों क्यों हो जाता है? एक्चुअली में इट्स अ ब्रेन वायरिंग. ये वायरिंग क्या है? ऑल दीज आर वेरी न्यू कॉन्सेप्ट जो स्पिरिचुअलिटी में बहुत पहले से थे, लेकिन साइंस अब इन चीजों को वैलिडेट कर रहा है. रिसेंटली आई केम अक्रॉस अ पेशेंट, उसने अपने स्टोरी शेयर किया. कहते सर आई एम वेरी वेरी सैड, मुझे कुछ अच्छा लगता नहीं है, मैं कुछ एंजॉय नहीं करता हूं. आई आस्क्ड हिम क्या प्रॉब्लम है आपको, क्या लाइफ में क्या प्रॉब्लम, आपके हेल्थ का कोई इशू है, या आपके फैमिली में कोई कॉन्फ्लिक्ट है, या कोई आपको फाइनेंशियल इशू है? कहते हैं नहीं सर सब ठीक है, मेरे फैमिली मेंबर्स बहुत अच्छे हैं, अच्छी डिसेंट फैमिली है, मेरा फाइनेंसिस भी ठीक ठाक है, बट अंदर ना कुछ खाली खाली रहता है. आई एम एम्प्टी इनसाइड, मजा नहीं आता है. मैंने सब कुछ किया, दोस्तों के पास भी घूमा, यहां भी गया, वहां भी गया, लेकिन पता नहीं आई फील वेरी वेरी डिप्रेस्ड, कुछ अच्छा नहीं लगता है. आई सेड व्हाट इज हैपनिंग, आपका सब तो ठीक है. तो वही उसने वही कहा कि सर यही तो मैं आपको कह रहा हूं, Outside everything is fine. Inside I am empty. This research shows that depression is a faulty circuit in the brain. आपको बाहर की सिचुएशन खराब होने की जरूरत नहीं है. अगर आपका सर्किट ऑन द राइट हैंड साइड जो सर्किट दिखाया डिप्रेशन का वैसा है तो आप डिप्रेस्ड हो जाएंगे. और राइट लेफ्ट हैंड साइड में जो सर्किट दिखाया वैसा सर्किट है तो बाहर कैसा भी हो फिर भी आप स्टेबल रहेंगे. आपको ऐसे लोग मिलते हैं जो बाहर सब कुछ होते भी फिर भी क्रिप करते रहते हैं. और ऐसे लोग भी हैं जिनकी लाइफ में बहुत इश्यूज हैं फिर भी स्टेबल हैं. ये क्या डिफरेंस है? दिस इज ऑल वायरिंग ऑफ द ब्रेन. यहां तक कि स्मार्टफोन एडिक्शन जो सबसे पॉपुलर है आज के टाइम में, है ना, स्टार्टिंग फ्रॉम क्रैडल टू ग्रेव, हर किसी को मोबाइल फोन एडिक्शन है, हर कोई इससे परेशान है. इसका भी देखा गया कि इसका भी सर्किट है ब्रेन में. आई कैन what do they say, image the circuit of a child and I can tell ki 10 saal baad isko smartphone addiction hoga. This is what this study says. Problematic smartphone and social media use, usme problem kaha hai uska, brain network faulty hai. Kuch log addicted nahi hote, kuch log ho jate hain. Kyun? Mobile phone to sabke samne hai. It's the brain network which is faulty actually. अब आप कहेंगे ये तो नेचुरल सी बात है ना. नो, ये जितने भी संस्कार हमने आपको बताए, वेदर इट इज एंगर, स्ट्रेस, ग्रीफ, मोबाइल फोन एडिक्शन, डिप्रेशन, ये सारे एक्वायर्ड हैं ओवर टाइम. इट्स लाइक कंडीशनिंग. पावलोव एक्सपेरिमेंट सबको पता है, सलाइवेशन होने लगा बेल से बिकॉज फूड और बेल को कंडीशन कर दिया गया था साथ में. ऐसे ही जब हम छोटे थे तो हमें क्या बताया गया, हमने अपने पेरेंट्स को कैसे देखा कि जब कोई बाहर स्ट्रेसफुल सिचुएशन आए तो यू डू लाइक दिस, यू बिकम सैड. हमने भी वो सैडनेस सीख लिया. एक छोटा बच्चा, एक डेढ़ साल का, दो साल का, वो पेरेंट्स को किसी और से आपस में लड़ते हुए देखता है तो उसने क्या सीख लिया, जब भी कोई ऐसी बात हो तो क्या करो, लड़ाई करो. जो हमारे लिए बहुत ऑब्वियस होता चला गया जैसे हम ग्रो हुए. छोटा सा एग्जांपल, जब एक बच्चा चलना सीखता है और वो टेबल से टकरा जाता है तो आमतौर पर पेरेंट्स या दादा दादी नाना नानी क्या करते हैं, वो तुम्हें चोट लगी, टेबल को क्या करो, हप करो, मारो. बच्चे ने क्या सीखा, गलती किसकी है, सामने वाले की. किसको मारो, रिएक्ट कैसे करो, बाय वायलेंस. ये एक्वायर्ड होते गए. तो जो राइट साइड पे आप देख रहे हो, ब्रेन में ये सर्किट्स फॉर्म होते हैं धीरे 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 धीरे. ऐसे ऐसे अलग अलग टाइप के इमोशनल थॉट पैटर्न्स बनते जाते हैं. मेरे घर में मेरी नीस है, 7 ईयर्स की है. She does not watch TV. मोबाइल फोन वो स्ट्रिक्टली 1.5 घंटा देखकर खुद ही बंद कर देती है. क्यों? उसके पेरेंट्स ने उसको शुरू से फोन, कभी खुद भी टीवी नहीं देखा तो उसको भी नहीं. इनफैक्ट कोई टीवी देख भी रहा हो तो वो कहेगी, टीवी आप क्यों देख रहे हो, इट्स नॉट गुड फॉर योर आइज, क्योंकि उसके माइंड को वैसे ट्रेन किया गया है. मोबाइल फोन उसके पेरेंट्स ने शुरू से उसको ट्रेन किया, टाइम स्टार्ट्स, टाइम स्टॉप्स. अब उसको ऐसी ट्रेनिंग हो गई है, वो खुद कहती है, आप मोबाइल फोन, मेरा टाइम हो गया, इसको बंद कर दीजिए. दिस इज माइंड ट्रेनिंग. तो ये संस्कार भी एक्वायर्ड हैं. फर्स्ट लेसन, ये जितने भी हमारे इमोशनल पैटर्न्स हैं, थॉट पैटर्न्स हैं, ये हमने एक्वायर किए हैं. और यही कनेक्टोमिक्स है. दिस इज अ बिग रेवोल्यूशन इन साइंस. पहले हम पढ़ते थे फ्रंटल लोब, ऑक्सीपिटल लोब, पैराइटल लोब, टेम्पोरल लोब, नथिंग, ये सारे आर्बिट्रेरी है. नाउ वी टॉक ऑफ कनेक्शंस. 86 बिलियन न्यूरॉन्स इन ह्यूमन ब्रेन एंड दे आर कनेक्टेड टू ईच अदर न्यूरॉन्स एंड द पैटर्न ऑफ कनेक्शन. जैसे वो कनेक्टेड हैं, वो हमारे थॉट पैटर्न्स और बिहेवियर पैटर्न्स को डिसाइड करता है. हम सब के 84 बिलियन न्यूरॉन्स अलग अलग कनेक्टेड हैं, इसलिए हम सबका थॉट और बिहेवियर पैटर्न अलग है. इसलिए किसी को गलत नहीं कहना, हर कोई अलग है। आप उनकी जगह पे क्यों नहीं सोच पा रहे हो, क्योंकि उसका पैटर्न अलग है। इट ब्रिंग्स लॉट्स ऑफ एक्सेप्टेंस। ठीक है, उसका पैटर्न वैसा है इसलिए वो वैसा सोच रहा है, वो गलत नहीं सोच रहा, अपनी जगह के हिसाब से राइट है। इट ब्रिंग्स लॉट्स ऑफ एक्सेप्टेंस। नाउ द क्वेश्चन इज, ठीक है, ये नेटवर्क्स तो बन गए, जैसे भी बने, बचपन से, पेरेंट्स से मिले, एनवायरमेंट से मिले, जो भी, अगर मैं इसको चेंज करना चाहता हूं, बिकॉज आई डोंट वॉन्ट टू डाई अर्ली, आई डोंट वॉन्ट टू लिव अ लाइफ विच इज सैड, विच इज डिप्रेस्ड, आई डोंट वॉन्ट सच अ लाइफ कि जिसमें मैं छोटी छोटी बातों पर सेंसिटिव हो जाऊं, गुस्सा करते रहूं, खुद को भी परेशान करूं, सामने वाले को भी। कैसे भी बना वो संस्कार, आई वॉन्ट टू चेंज दिस, मुझे नहीं पसंद है, आई हैव हैड एनफ। मैंने अपने रिलेशनशिप को लूज किया, मैंने अपनी जॉब में प्रॉब्लम्स क्रिएट किए, रोज मुझे बॉस से नजरें चुरानी पड़ती है क्योंकि मैंने उसके साथ रेपो नहीं बनाई हुई है, मुझे फेस करने में प्रॉब्लम होती है। आई डोंट वॉन्ट टू लिव दिस काइंड ऑफ लाइफ। कैन आई रीफॉर्मेट माई सर्किट्स? कैन आई? दैट्स वॉट प्रिंसिपल ऑफ न्यूरोप्लास्टिसिटी कम्स टू अवर रेस्क्यू। मोटर रिकवरी इन स्ट्रोक। आप सबको पता है जब किसी को स्ट्रोक होता है तो पैरालिसिस होके बाद ओवर मंथ्स टू ईयर्स रिकवरी हो जाती है। हो जाती है ना रिकवरी। वो कैसे होती है? ब्रेन में जो लेफ्ट ओवर न्यूरॉन्स हैं वो अपने कनेक्शंस नए बना लेते हैं और मोटर फंक्शन को रिस्टोर कर लेते हैं। सेम वे ये मोटर डोमेन है, एक इमोशनल या थॉट डोमेन है, वो भी रिकवर हो सकता है। फर्क इतना था कि साइंस पहले सिर्फ मोटर रिकवरी को अहमियत देती थी, अब क्योंकि साइकिक प्रॉब्लम्स बढ़ती जा रही हैं, हम थॉट डोमेन को भी अहमियत देने लगे हैं और सेम रिकवरी हो सकती है। एंड दिस इज डॉक्टर डोनाल्ड हेब। 1949 में उन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल दिया, प्रिंसिपल ऑफ न्यूरोप्लास्टिसिटी, न्यूरॉन्स दैट फायर टुगेदर वायर टुगेदर। ये नीचे आप जो ट्री जैसे देख रहे हैं, लेफ्ट बॉटम, ये थॉट्स हैं। जो भी थॉट आपके मन में आता है वो थॉट एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है इन द न्यूरॉन्स, और जो सिग्नल बार बार ही होता है वो वायरिंग हो जाता है। तो देखिए विद टाइम क्या हुआ, वो कनेक्शन बिटवीन द टू न्यूरॉन्स स्ट्रांग हो गया, वायरिंग हो गई, और जो हम थॉट नहीं क्रिएट करते हैं वो वाला डिस्कनेक्ट हो जाता है। इसको थोड़ा सा हम और समझेंगे। इसीलिए आप ऊपर जो मिडल में देख रहे हैं, स्ट्रांग पाथवे और वीक पाथवे, थॉट का एक पैटर्न बन जाता है। ये स्ट्रांग मेरा थॉट बनता है, ये नेगेटिव थॉट या कोई भी थॉट वीक बनता है। ये न्यूरोप्लास्टिसिटी कैसे होता है? अगर हम अपने थॉट्स को, पैटर्न्स को, इमोशनल पैटर्न्स को चेंज करना चाहते हैं तो उसके 3 स्टेप्स हैं। थॉट मैनेजमेंट सीखने आए ना हम, नो, बिलीव, एग्जीक्यूट। अभी तक आपने सीखा नॉलेज, 5 वाइसेस, लस्ट, एंगर, ग्रीड, अटैचमेंट, ईगो आर एनिमीज फॉर योर इमोशनल माइंड। दे हाईजैक योर इमोशनल माइंड और उसकी वजह से आपका ब्रेन, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स भी काम नहीं करता है, एंड इट इज बिकमिंग द कॉज ऑफ नॉट जस्ट मेंटल प्रॉब्लम्स बट फिजिकल एलिमेंट्स, जो अभी हमने देखा डॉक्टर्स के केस में क्या हुआ स्ट्रेस से। सेकेंड स्टेप कम्स बिलीफ। मैंने जान तो लिया बट क्या मैं उसको मानता हूं? एंड थर्ड इज एग्जीक्यूट। वी विल सी दीज स्टेप्स इन डिटेल। नॉलेज ऑफ वॉट कॉन्स्टिट्यूट्स रैशनल प्रोडक्टिव थिंकिंग। मैंने बहुत जगह जब सेशंस लिए तो मेनी ऑफ द टाइम्स पीपल से, सामने वाला कुछ कर रहा है तो गुस्सा नहीं आएगा क्या? मेरे साथ कुछ गलत हो जाए तो मुझे क्या दुख नहीं होगा क्या? ये हमारी कंडीशनिंग है, इट्स नॉट नेसेसरी। हमने कंडीशन अपने आप को ऐसा कर दिया, बट थोड़ा दिमाग लगाओ, जो हम कर रहे हैं क्या मेरे लिए वो प्रोडक्टिव है? क्या वो रैशनल है? मेरा फ्रेंड के साथ कुछ हो जाए तो मैं उसको क्या बोलता हूं? कोई बात नहीं, इट्स ओके, मूव ऑन, कोई बात नहीं, लाइफ में ऊपर नीचे चलता रहता है, इतना लोड मत लो, यही कहते हैं ना। तो रैशनल बात उसके लिए कर पाते, लेकिन खुद के लिए क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि इमोशनल माइंड एकदम नेगेटिव हो जाता है, रैशनल माइंड जो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स है वो तो इमीडिएटली काम करना बंद कर देता है। तो सबसे पहले नॉलेज लीजिए। इनफैक्ट जो कंटेंट हम सोशल मीडिया पे देखते हैं उसमें तो और ज्यादा एग्जैजरेट करके दिखाते हैं। छोटी सी बात होगी, आप डेली सोप्स को ले लो, सास बहू सीरियल्स को ले लो, ऐसा नहीं कि डॉक्टर्स नहीं देखते, देखते हैं, वेब सीरीज देखते हैं, उसमें छोटी सी बात होगी, इतना बड़ा एंगर दिखाएंगे, इतना बड़ा रिएक्शन दिखाएंगे, वो आपकी साइकिक बना रहा है, आपके ब्रेन में फॉर्मूला फीड कर रहा है, क्या छोटी बात हो रिएक्शन बड़ा, और फिर वो हमें ही प्रॉब्लम करता है। जो हम अपने मन में भरेंगे, ब्रेन लाइब्रेरी में डालेंगे, वैसे ही थॉट्स हमारे पास आएंगे। एक छोटा सा एग्जांपल, मेरा एक फ्रेंड, उसने बोला पिछली रात को मैं बहुत बोर हो रहा था तो आई डिसाइड टू वॉच अ हॉरर मूवी। हॉरर मूवी में देखता है कि एक भूत बंगला है जिसमें ऊपर से रोप्स लटक रही हैं एंड देयर इज स्टिल डार्कनेस, और जैसे ही एक पर्सन एंटर करता है उस हाउस में, मूवी में वो रोप को टच करता है, दैट रोप टर्न्स इनटू अ स्नेक, ऐसा वो देखता है तो वो बहुत डर जाता है मेरा दोस्त, और वो सो जाता है मूवी बंद करके। बाई चांस वो रात को वॉशरूम के लिए उठता है और एक्सीडेंटली उसका एक कॉर्ड पर, मोबाइल की कॉर्ड पर उसका एक्सीडेंटली पैर पड़ जाता है। क्या हुआ होगा उसके साथ? तो उसने वही शेयर किया, एक तो मूवी देख के डर गया और मुझे लगा सांप है तो डबल डर गया। तो आई टोल्ड हिम आज ये मत करना, हॉरर मूवी नहीं देखना, मेडिटेशन करके सोना, ब्रह्मा कुमारी कमेंट्री लगाना रात को। तो उसने कमेंट्री लगाई, आई एम वेरी पावरफुल सोल, आई एम हैप्पी, गॉड मेरे साथ है, एवरीथिंग इज गुड, सब कुछ बहुत अच्छा है, मेरे साथ कुछ गलत नहीं हो सकता, एंड ही स्लेप्ट ऑफ। रात को फिर उठा वॉशरूम के लिए, अब इस बार उसका कॉर्ड पर पैर पड़ेगा तो कैसे थॉट्स आएंगे, कैसा रिएक्शन होगा, आप खुद सोच सकते हो। क्वेश्चन ये है, सिचुएशन वही है, पर्सन वही है, नाइट वही है, कॉर्ड वही है, रिएक्शन अलग अलग क्यों? पहले दिन क्या भरा माइंड में? एक कॉर्ड स्नेक हो सकती है। सेकंड टाइम क्या भरा? एवरीथिंग इज गुड। तो कंटेंट पर थोड़ा ध्यान दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हम पेशेंट्स के साथ डील करते हैं, जब हम उनको क्राई करते हुए देखते हैं ना, तो हम सिर्फ देख नहीं रहे हैं, हम अपने माइंड में कॉन्सेप्ट बना रहे हैं, कुछ भी प्रॉब्लम हो क्राई करना ओके है। दिस इज ओल्ड कॉन्सेप्ट, इफ यू आर मूविंग टूवर्ड्स अ न्यू वर्ल्ड वी विल सी व्हाट्स अ न्यू वर्ल्ड कॉन्सेप्ट। यू एग्री विद मी? ग्रेट। बिलीव इट बाय एक्सपीरियंस, मैंने कह दिया इसलिए नहीं, अब आप खुद एक्सपीरियंस करना, जो आपने रिएक्शन किया उससे प्रोडक्टिव हुआ या नेगेटिव हुआ। किसी ने कुछ कहा फिर भी आप शांत रहे, स्टेबल रहे, तो वो लाइफ स्मूथ रही, या आपने जवाब दे दिया उल्टा चिल्ला दिया। सुबह एक हस्बैंड लेट हो रहा था तो वाइफ के ऊपर उसने चिल्ला दिया, तुमने क्या किया है, खाना अभी तक नहीं बनाया, मुझे लेट हो रहा है, एंड ऑल दैट स्टफ। चिल्ला के चला गया, अब शाम को वापस आएगा तो क्या करना पड़ेगा, वाइफ को मनाने के लिए कितना समय देना पड़ेगा। और वहीं पर अगर वो सुबह थोड़ा शांत हो जाता और बहुत प्यार से कहता कोई बात नहीं, थोड़ा जल्दी जल्दी करते हैं, इनफैक्ट कहता कि मैं भी आपकी हेल्प कर देता हूं, चलो जल्दी जल्दी कर लेते हैं, शाम को वाइफ कैसे ग्रीट करती। तो ये खुद ही हमारे एक्सपीरियंसेस सोचना है, डे टू डे छोटी छोटी चीजों में। आज बॉस ने कुछ कह दिया, मैंने कोई बात नहीं, मैंने बहुत ग्रेसफुली उसको एक्सेप्ट करके चल पड़ा, नेक्स्ट टाइम बॉस ज्यादा रिस्पेक्ट करेगा। और आज मैंने आंखें दिखा दी तो नेक्स्ट टाइम मुझे बॉस को फेस करने में प्रॉब्लम होगी। तो इमीडिएट का मत सोचिए, थोड़ा लॉन्ग टर्म सोचिए, रैशनल सोचिए, और फिर बिलीव कीजिए जो हम कह रहे हैं वो राइट है या रॉन्ग है। एंड थर्ड, इसको प्रैक्टिस में कैसे लाएं? सिर्फ सुनने से और बिलीव करने से नहीं होगा। तो एक होता है जानना, फिर होता है मानना, और फिर होता है चलना। जानना, मानना, चलना, ये चलने वाला स्टेप थोड़ा सा डिफिकल्ट है क्योंकि पुराना संस्कार बना हुआ है, लेकिन पॉसिबल है रेपिटिशन से। हमने देखा था ना फायरिंग वायरिंग, एक एग्जांपल से समझ सकते हैं इसको। अ यंग बॉय गोज टू द कॉलेज फॉर द फर्स्ट टाइम, और एज यूजुअल हम सब भी गए मेडिकल कॉलेज में, तो दोस्तों ने क्या कहा, अब तुम बड़े हो गए हो, अब तो तुम एडल्ट हो गए हो, तो सिगरेट अल्कोहल चलो शुरू करते हैं। तो सिगरेट उसको स्टिमुलस, लेफ्ट हैंड साइड में आप देखो स्टिमुलस आया। अब उसके मन में दो थॉट्स आते हैं, वो ट्रीज जैसे जो हैं, वो दो थॉट्स हैं। एक कहता है यार मेरे दोस्त क्या समझेंगे तो मैं पी लेता हूँ सिगरेट। दूसरा थॉट कहता है नहीं नहीं मेरे घर के संस्कार नहीं है, मैं नहीं पीता हूँ। बट उस दिन वो पीयर प्रेशर में आके सिगरेट पी लेता है, तो जो ऊपर वाला सर्किट है स्मोकिंग ओके, वहां पर फायरिंग हो जाती है क्योंकि बिहेवियर वैसा हो जाता है। ओके, अब बार बार ही वो ये करता है, सेकेंड थर्ड फोर्थ टाइम, धीरे धीरे वो वायरिंग बार बार ही, फायरिंग बार बार होने से वायरिंग बन जाती है। अब इसको हम कहेंगे उसकी हैबिट बन गई है, एडिक्शन। अब वो सोचेगा नहीं मैं पीऊं नहीं पीऊं, क्योंकि पीने वाला सिगरेट काफी, सिगरेट जो है वो सर्किट बहुत स्ट्रांग हो गया है, दूसरा सर्किट वीक है, तो हम कहेंगे उसको एडिक्शन हो गया है। अब उसको चेंज करना है तो क्या करें? बहुत सिंपल है, न्यूरोप्लास्टिसिटी का यूज करेंगे। दो थॉट्स आए, सबसे पहले हमने उसको क्या दी? नॉलेज। देखो सिगरेट पियोगे कैंसर हो सकता है, लंग्स प्रॉब्लम्स, माउथ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, आपकी मेमोरी प्रॉब्लम हो सकती है, लिवर प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। उसको नॉलेज दिया, उसको रियल केसेस दिखाए कि देखो ऐसा हो रहा है, और उसको भी एक्सपीरियंस कि तुमने भी एक्सपीरियंस किया होगा ना कि तुम्हें अब कफ रहने लगा है, तुम्हें इनडाइजेशन होने लगा है। नॉलेज दिया तो नो बिलीव, अब वो बिलीव करने लगा हाँ जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं, एंड विद अ वेरी स्ट्रांग कन्विक्शन उसने पहली बार उस थॉट को आगे बढ़ाया, मैं नहीं पीऊंगा, आई विल नॉट स्मोक। द फर्स्ट टाइम सिग्नल गोज टूवर्ड्स द नो स्मोकिंग पाथवे। और जब वो बार बार इसको रिपीट करता है तो फर्स्ट टाइम सबसे मुश्किल होता है, जैसे स्विमिंग में फर्स्ट डाइव सबसे मुश्किल होती है, सब्सिक्वेंटली इजी हो जाता है, ऐसे ही फर्स्ट टाइम नो कहना मुश्किल है, लेकिन क्योंकि बार बार करने से वो सर्किट पक्का होता जाता है, इट बिकम्स इजी। लोग मुझसे कहते हैं आप 3:30 कैसे उठ जाते हो, आपको अजीब लगता है ना डॉक्टर 3:30 उठ जाता है सुबह, लेकिन मुझे अजीब ये लगता है आप लोग 8 बजे तक कैसे सोते रहते हो। रीजन बीइंग मेरी वायरिंग ऐसी है, आपकी वायरिंग वैसी है, कौन सी वायरिंग आपको चूज करनी है ये आपको डिसाइड करना है। आई एम हेयर टू टेल यू द प्रोस एंड कॉन्स, यू ऑल एग्री विद मी राइट। मेडिटेशन, अभी तक जो आप समझते थे उसको भूल जाओ कि खाली बैठना है, आंखें बंद करना है और बिल्कुल जीरो थॉट होना है, नो वो मेडिटेशन नहीं है। मेडिटेशन कम्स फ्रॉम द वर्ड मेडिटरी, लैटिन वर्ड विच मीन्स टू कॉन्टेम्पलेट। तो मेडिटेशन में एक्चुअली हम एक्टिवली कुछ थिंकिंग प्रोसेस कर रहे हैं, लेकिन मेडिटेशन में हम थिंकिंग क्या कर रहे हैं विच इज वेरी प्योर एलिवेटेड थॉट्स, गॉड को याद करते हुए। गॉड का रोल क्या है मेडिटेशन में और हम कर क्या रहे हैं? मेडिटेशन में हम अपनी ब्रेन की रीवायरिंग कर रहे हैं। अभी हमने देखा जब न्यूरॉन्स में फायरिंग होती है तो बार बार करने से वायरिंग हो जाती है, और न्यूरॉन्स में फायरिंग कब होती है? जब भी आप कुछ सोचते हो। तो व्हेन आई थिंक आई एम वेरी प्योर, आई जस्ट रिपीट विद माई सेल्फ, आई एम वेरी प्योर, आई एम वेरी लवफुल, आई एम वेरी पीसफुल, आई जस्ट रिपीट, वो थॉट मेरे ब्रेन में फायरिंग कर रहा है न्यूरॉन्स में, बार बार रिपीट करने से वायरिंग हो रही है। अभी तक हम उल्टा कर रहे थे, हम अपने दोस्तों से भी कह रहे थे क्या यार मैं बहुत स्ट्रेस में हूं, मेरी लाइफ में बहुत चैलेंजेस हैं, मुझे गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है, अपने आप से भी और औरों से भी। हम उसकी वायरिंग कर रहे थे, हम वैसे और बनते जा रहे थे। आज से चेंज सिर्फ कहना शुरू करो मैं बहुत अच्छा हूं, मैं बहुत प्यारा हूं, मैं बहुत पीसफुल हूं, आप बनते जाओगे। फायरिंग मेक्स वायरिंग। तो मेडिटेशन में हम केवल वो करते हैं। अब गॉड का क्या रोल है? अगर मैं अभी आपको यहां पर कहूं कि आपके लाइफ में जो सबसे प्यारा इंसान है उसको याद करो, तो स्माइल अपने चेहरे पर अपने आप आ जाएगी, वो लव की फीलिंग्स अपने आप इमर्ज हो जाएंगी। आप सबसे टेस्टी डिश को याद करो, वो मुंह में सलाइवेशन अपने आप आ जाएगा। अब ऐसे इंसान को याद करो जो सबसे खराब लगता है आपको, वो हेट्रिड की फीलिंग्स अपने आप आ जाएंगी। गॉड की फीलिंग्स क्या है? गॉड कैसा है? वो ओशन ऑफ लव, पीस, हैप्पीनेस, ब्लिस, पावर, सब कुछ है। तो जब हम उसको याद करते हैं तो वो एक फैसिलिटेटर बन जाता है उन फीलिंग्स को अपने ब्रेन में एक्टिवेट करने के लिए। इट्स एज सिंपल एज दैट। तो मेडिटेशन में हम क्रिएट करते हैं उन फीलिंग्स को, उन थॉट्स को विजुलाइज करते हुए कि गॉड कैसा है, पावर ऑफ लव, ओशन ऑफ लव, ओशन ऑफ पावर, पीस, और वो हमारे सर्किट एक्टिवेट। तो इट्स लाइक रीवायरिंग, उन पुराने सर्किट को जैसे हमने बनाया अब हम उनको रीफॉर्मेट कर रहे हैं। सोल की नेट क्वालिटीज ये 7 हैं, जो आपने और लेक्चर्स में भी सीखा होगा। लव, पीस, हैप्पीनेस, पावर, प्योरिटी, ब्लिस एंड नॉलेज। ये क्वालिटीज अच्छी हैं या खराब हैं? बोलिए, अच्छी हैं। प्रोडक्टिव हैं या काउंटर प्रोडक्टिव हैं? प्रोडक्टिव हैं। वाइसेस, लस्ट, एंगर, ग्रीड, ईगो, अटैचमेंट, अच्छी हैं या खराब हैं? प्रोडक्टिव हैं या काउंटर प्रोडक्टिव हैं? कौन सी चाहते हो? ये चाहते हो, वो चाहते हो, ये चाहते हो? देन यू आर ऑन द गॉड साइड। अगर आप वो वाली चाहते हो, देन यू आर ऑन द डेविल साइड। यही फर्क है भगवान और शैतान में, ठीक है? एक भगवान की क्वालिटीज हैं, एक शैतान की क्वालिटीज हैं। समहाउ कलयुग में हम ग्रो अप शैतानी क्वालिटीज के साथ हुए, बट नाउ इज द टाइम टू ट्रांसफॉर्म टू एंजेलिक क्वालिटीज, गॉडली क्वालिटीज, जिनको आप, वो भी आपके अंदर ही हैं, बस उनको एक्टिवेट करना है। और जो दूसरी डेविलिश क्वालिटीज है उनको यूज नहीं करेंगे तो वो अपने आप ही डीएक्टिवेट हो जाएंगी, राइट? द थ्री इन वन अप्रोच, दिस इज माई बेस्ट स्लाइड। इफ आई से आप एक नहीं हो, तीन हो। अच्छा, आपके कितने फादर्स हैं? तो यहां थोड़ा सिखाया होगा। एक आपका सोल फादर है ना, जिसको हम गॉड कहते हैं। एक कॉर्पोरियल फादर, जो हमारे बॉडी के फादर हैं। आज एक नई चीज सीखते हैं, आप एक नहीं हो, आपके तीन। तीन कैसे हो? त्रिमूर्ति। यस, तो ये एक आर्टिकल है। आई ऑलवेज टॉक साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी टुगेदर, सेल्फ, मी एंड आई। दिस आर्टिकल वॉज पब्लिश 2022 इन कॉग्निटिव न्यूरोडायनामिक्स जर्नल। इट सेज आई एम थ्री। हाउ? सेल्फ, मी एंड आई, ये मैं ही हूं, लेकिन मेरे ये तीन रूप हैं। कैसे? सेल्फ इज द ऑब्जर्वर। जैसे हम मूवी देख रहे हैं तो मूवी में लोग एक्ट कर रहे हैं, लेकिन मैं उनको सिर्फ ऑब्जर्व कर रहा हूं। तो जब मैं दुनिया को एक ड्रामा की तरह देखता हूं, मैं ऑब्जर्वर हूं। मी, रिसीवर, रिसीवर। तो जब मेरे साथ कुछ हो रहा है, कोई मुझे कुछ कह रहा है, टच कर रहा है या कुछ दे रहा है, तो आई एम द रिसीवर, दैट इज द मी पार्ट। एंड देन द आई पार्ट, वेन आई एम द गिवर, द ट्रांसमिटर। अब मैं कुछ रिस्पॉन्ड कर रहा हूं, मैं कुछ बोल रहा हूं, कुछ दे रहा हूं, दैट इज द आई। हो गए ना तीन? तीनों सिनेरियोज में अगर हम अपने आप को सीख लें कि कैसे मैनेज करना है, तो कभी गड़बड़ नहीं होगी। कैसे? थॉट मैनेजमेंट सीखने आए हैं ना। ऑब्जर्वर, दुनिया में बहुत कुछ हो रहा है, बहुत कुछ हो रहा है, मर्डर हो रहे हैं, रेप्स हो रहे हैं, कुछ कुछ बहुत गंदा भी हो रहा है, सोशल मीडिया पे भी बहुत कुछ आ रहा है। उनको कैसे देखना है? कैसे देखना है? सेल्फ मोड में, ऑब्जर्वर। उनको अपने अंदर नहीं लेना है, नहीं लेना है, नहीं तो आप वैसे बन जाओगे, ठीक है? मूवी देखते हुए रोना नहीं, दुनिया एक मूवी है, उसमें बहुत कुछ चल रहा है, चलने दो, नहीं तो उनका डर्ट आपके अंदर आ जाएगा। मी, अब कोई कुछ दे रहा है तो उस समय हमें क्या करना है, ये भी हमें सीखते हैं हम स्पिरिचुअलिटी में, ताकि हम लाइफ को एक अच्छी तरह जी पाए। और आय, वो मैं भी बताऊंगा। और आय, आय क्या है? व्हेन आई गिव, व्हेन आई गिव। तो मुझे देना क्या है? देना तो मुझे ये है। तो हम कोई ये सब देना चाहते हैं। कौन नहीं चाहता कि मैं लव दूं, हैप्पीनेस दूं, पीस दूं, लोगों को अच्छी चीजें दूं। लेकिन क्या होता है कि जब हम मी वाले स्टेट में आते हैं ना, मी, तो हम कुछ गलत ले लेते हैं, फिर हम अच्छा दे नहीं पाते। मुश्किल होता है ना, कोई मुझे खराब चीज दे और मैं उसको फिर भी अच्छी चीज दूं, थोड़ा मुश्किल है। तो मी जब हम लेने के टाइम पर हों, तो हमें कुछ ध्यान रखना है, और वो ध्यान रखना है ये। स्पिरिचुअलिटी में हम दो चीजों पर बात करते हैं। वन इज द क्वालिटीज, द वर्च्यूज, द गुण जो मुझे में होने चाहिए। वो गुण सात थे जो हमने देखे, सुख, शांति, प्रेम, आनंद, पवित्रता, ज्ञान और शक्ति। लेकिन उससे भी इंपॉर्टेंट जो आज के समय में है, वो है पावर्स, द एट पावर्स। जब मेरे पास कुछ आ रहा है लाइक अ चैलेंज, लाइक अ ऑब्स्टेकल, तो मुझे कैसी पावर्स हो ताकि मैं उस चीज को डॉज कर सकूं। फर्स्ट इज पावर टू टॉलरेट। ये पर्सन पेड़ को पत्थर मार रहा है, लेकिन पेड़ क्या रिएक्ट कर रहा है? फिर भी फल दे रहा है, टॉलरेट कर रहा है। अगर हम अपने अंदर टॉलरेशन पावर ले आए, तो उनकी नेगेटिविटी को हम अपने अंदर नहीं ले रहे हैं। पावर टू एकोमोडेट। कई बार क्या होता है, हम रिएक्ट तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन अपने अंदर भर लेते हैं, बाहर रिएक्ट नहीं कर रहे हैं, लेकिन अंदर ही अंदर पेंट अप करते रहते हैं। वहां पर यूज करें पावर टू एकोमोडेट। जैसे एक समुद्र होता है, उसके अंदर कचरा कितना भी डालो वो कभी गंदा नहीं होगा, कुछ भी डालो चाहे, सब कुछ समा लेता है। ऐसे बन जाइए, पावर टू अकोमोडेट, जैसे गणेश जी दिखाते ना बड़ा पेट, सब कुछ समा लेते हैं। पावर टू डिस्क्रिमिनेट, सही क्या है गलत क्या है। बाय योर थर्ड आई, सिर्फ फिजिकल लेवल पर मत देखिए, इस लेवल पर देखिए क्या गुडनेस है क्या बैड है। मुझे पैसा कमाना है एज अ डॉक्टर, मैं गलत तरीके से भी, बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, लेकिन ध्यान रखो वो जो तरीका कमाया हुआ है कहीं ना कहीं वो बाद में मुझे ही प्रॉब्लम, तो उन चीजों को निग्लेक्ट मत करो, कार्मिक थ्योरी को बाहर नहीं लेकर जाओ। पावर टू जज, जज राइट डिसीजन। धृतराष्ट्र जो था उसको पता था कि वो गलत कर रहा है, लेकिन जजमेंट पावर नहीं यूज कर पाया। सही के साथ खड़े होने की हिम्मत रखो। पावर टू फेस, आज इमीडिएटली न्यूज आती है कि उसकी डेथ हो गई या ऐसा हो गया, फाइनेंशियल क्राइसिस आ गया, पावर रखिए कि आप टॉप फेस कर सकें चीजों को। पावर टू कोऑपरेट, लोगों को अहमियत दीजिए, अहमियत अपने आप मिलेगी। अटेंशन दीजिए, टाइम दीजिए, सर्विस जितना करेंगे खुद मिलेगा। पावर टू विड्रॉ, वेरी इंपॉर्टेंट। टॉर्टोइस को देखिए, टॉर्टोइस जो होता है जब आंधी तूफान आता है तो तूफान से लड़ता नहीं है, तूफान क्यों आया, वो अपने शेल में चला जाता है। तो हर जगह फाइट करने की जरूरत नहीं है, कि कहीं कहीं पर विड्रॉ करना भी सीखिए, खासतौर से जहां पर आपको लगता है कि यहां पर करना बात को बिगाड़ेगा। एंड पावर टू पैकअप, बड़ी बात को छोटा करना, छोटा करना। कुछ लोग होते हैं छोटी बात को बड़ा करते हैं, कुछ लोग होते हैं बड़ी बात को भी कोई बात नहीं हो जाएगा। कौन से लोग ज्यादा अच्छे हैं, सुखी हैं, उनकी लाइफ स्मूथ चलती है, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, आप जानते हैं। और ये पावर हमें मिलती है राजयोग से। तो बेसिकली इन पावर्स को पहले हम जानते हैं और फिर मेडिटेट करके उनको अपना सर्किट में ले आते हैं। दिस इज न्यू नॉलेज फॉर द न्यू वर्ल्ड। तो आप किंग बन जाते हो अपने माइंड के। मन जो नेगेटिव सोचता था अब वर्च्यूज को यूज करता है। वो उसी कंडीशन में पहले गुस्सा करता था, अब शांत रहता है। उसी कंडीशन में परेशान होता था, अब खुश रहता है। उसी कंडीशन में वो ईगोइस्टिक होता था, अब सबके लिए सपोर्टिव हो जाता है। ग्रीड करता था, अब सर्विस करता है। उन्हीं कंडीशंस में, एडवर्स सिचुएशंस में पावर्स को यूज करके वो कंट्रोलर ऑफ सिचुएशंस माइंड बन जाता है। तो हमने जो देखा वो डिप्रेशन व्यक्ति, वो एक एक्सट्रीम था, कलयुग का एक्सट्रीम था। बाहर सब कुछ अच्छा होते हुए भी मन खराब है तो परेशान है। दूसरा एक्सट्रीम है, बाहर सब कुछ खराब है कलयुग में, लेकिन मेरे मन में मेरा कंट्रोल है, पावर्स हैं, वर्च्यूज हैं, मैं राजा हूं। एंड इट कम्स फ्रॉम सिंपल, हमने देखा मेडिटेशन। मेडिटेशन कुछ सिर्फ स्पिरिचुअल टर्म नहीं है, साइंटिफिकली हम बस, मेडिटेशन इज द प्रोसेस, हम रिपीट कर रहे हैं उन चीजों को ताकि वो एक्टिवेट हो जाए सर्किट और वो वायरिंग हो जाए। आई कॉल इट ब्रेन रीवायर फॉर द न्यू वर्ल्ड, फॉर अ न्यू लाइफस्टाइल। इसके साइंटिफिक एविडेंस भी है, बहुत सारी स्टडीज आ रही हैं। यू सी अगेन, गेमिंग एडिक्शन, मोबाइल फोन एडिक्शन बहुत कॉमन है। तो लोग कहते हैं बंद कर दो मोबाइल, इससे दूर रहो, उससे दूर रहो। नो, दैट इज नॉट द सोल्यूशन। उसके फायदे भी तो हैं, बस हमें अपने माइंड को उसके नेगेटिव एस्पेक्ट से लेकर पॉजिटिव में जाना है, खराब चीजों से पॉजिटिव में। डॉक्टर्स के लिए कितना इंपॉर्टेंट है आप सब जानते हैं, आई नीड नॉट टेल यू। तो मेडिटेशन से जब हम अपने माइंड को रीवायर कर लेते हैं, कंट्रोलर बना लेते हैं, तो मोबाइल को ज्यूडिशियसली यूज करते हैं। वो छोटी बच्ची यूज कर सकती है तो हम क्यों नहीं कर सकते। तो मोबाइल फेंकना नहीं है, छोटा मोबाइल नहीं लेना है, साइट्स को ब्लॉक नहीं करना है, अपने माइंड को ट्रेन करना है। सेम विद डिप्रेशन, डिप्रेशन में हम सेरोटोनिन इनहिबिटर्स देते हैं, बट व्हाट इफ मैं अपने ब्रेन की वायरिंग ही ऐसे कर लूं कि कुछ भी हो आई एम स्टिल हैप्पी। तो एक वो दुनिया है, एक ये दुनिया है, एक डेविलिश जहां पर वाइसेस हैं, जहां पर पावरलेस हूं मैं, एक एंजेलिक गॉडली वर्ल्ड है जहां पर मेरे पास पावर्स हैं, वर्च्यूज हैं। सेम सिचुएशंस में मेरे रिएक्शन अलग है, मेरी लाइफ अलग है। ये तो चीजें हो गई थॉट्स की। कुछ लाइफस्टाइल मेजर्स जो हमें करने चाहिए, फूड। कितने लोग नॉन वेजिटेरियन हैं? एलोपैथी में पहले नहीं मानते थे कि फूड का कुछ इम्पैक्ट होता है. लेट अस सी न्यू रिसर्च क्या है. हम जानते हैं जैसा फूड हम खाते हैं हमारी गट माइक्रोबायोटा उसी तरह की बनती है, और गट माइक्रोबायोटा से हॉर्मोन्स जो केमिकल्स रिलीज होते हैं हमारे ब्रेन को अफेक्ट करते हैं. तो एपिलेप्सी, पार्किंसन, डिमेंशिया, यहां तक कि इमोशनल डिसऑर्डर्स में इसका रोल है, जिसको हम कहते हैं गट ब्रेन एक्सिस. लेटेस्ट रिसर्च. तो इसमें क्या किया गया, जो पर्सन सोशल एंग्जाइटी जिनको थी, जो एग्रेसिव थे, उनके माइक्रोबायोटा को लेकर गट के माइस में डाला गया, एंड देखा गया कि वो माइस भी विद टाइम एग्रेसिव हो गए. तो अन्न से गट और गट से मन, तो जिसको स्पिरिचुअलिटी में कहा गया जैसा अन्न वैसा मन. तो मन को अगर शांत चाहते हो तो शांत प्रवृत्ति वाला फूड लेना चाहिए, मन को अशांत करना चाहते हो तो अशांत प्रवृत्ति वाला फूड लेते रहो, खुश रहो. खुश रह सकेंगे, अशांत है तो खुशी कैसे होगी. म्यूजिक, म्यूजिक सबको पसंद है, लेकिन अ वर्ड ऑफ कॉशन, म्यूजिक में वो कैपेसिटी है वो जो सीधा ब्रेन की वायरिंग में बहुत पावरफुल इंपैक्ट डालता है. मानते हैं वो एकदम से इमोशंस को जनरेट करता है. जहां एक पॉजिटिव म्यूजिक आजकल आईसीयू में प्ले किया जाता है, ओम की ध्वनि प्ले की जाती है वार्ड्स में, ओटीज में, देखा गया कि रिकवरी फास्टर हुई पेशेंट्स की, उनका पेन परसेप्शन कम हुआ. वहीं ऐसे म्यूजिक जो लस्टफुल म्यूजिक है, जिनको हम कहते हैं सैड सॉन्ग्स, हेट सॉन्ग्स, जैजी सॉन्ग्स, वो हमारे नेगेटिव एस्पेक्ट को फायर कर रहे हैं, और फिर हमारा रिएक्शन भी वैसा होता है. तो अगर आपको लगता है कि मेरे रिएक्शन ऐसे हो जाते हैं, तो कहीं ना कहीं ये चीजें भी उसमें कॉन्ट्रीब्यूट कर रही हैं. तो म्यूजिक की से हीलिंग क्यों ना करें हम, क्यों ना शास्त्रीय संगीत सुने, स्पिरिचुअल म्यूजिक सुने जब मन करे तो. वेकअप टाइम, कितने लोग 6 बजे से पहले उठते हैं, वेरी नाइस. 5 बजे से पहले, 4 बजे से पहले, ओके. कुछ एग्जाम्पल्स, ओटो लुई नोबेल लॉरिएट, प्रोफेसर रामानुजन, मेंडलीव, केमिस्ट्री में हमने सब पढ़ा है मेंडलीव टेबल. इन लोगों ने शेयर किया कि 4 से 5 के समय में जब वो उठे तो समबडी लाइक जैसे उनको कोई सिग्नल दे रहा है, और वो लिखते गए, एंड दोज बिकम इन्वेंशंस एंड डिस्कवरीज. ये समय क्या इतना महान क्यों है. कहते हैं ना अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज. बच्चों को भी कहते हैं सुबह जल्दी उठ के पढ़ो. क्यों, स्टडीज में भी देखा गया कि उस समय में हमारी क्रिएटिविटी और प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी ज्यादा होती है, आउट ऑफ द बॉक्स सॉल्यूशंस मिलते हैं. ऐसा क्यों होता है आपको मालूम है. जो लोग नेगेटिव वाइब्स वाले होते हैं उनको रात को नींद नहीं आती, लेकिन उससे पूछोगे वो कहेंगे 2 बजे के बाद हमें बहुत अच्छी नींद आई, लेकिन तो वो सो रहे होते हैं उस समय में 4 से 6 के बीच में. लेकिन 4 से 6 के समय में कौन उठा हुआ होता है, स्पिरिचुअल लोग जो एलिवेटेड सोल्स होती हैं, वो उस समय मेडिटेट कर रही होती है, उनके वाइब्स एनवायरमेंट को चार्ज कर देते हैं और वो पावर्स आपको फील होती है. दिस इज ऑल वाइब्रेशंस जो अभी तक हम सिर्फ शायद स्पिरिचुअलिटी में, लेकिन अब साइंस उसको वैलिडेट कर रहा है. और स्लीप हम जानते हैं अब साइंस के माध्यम से, स्लीप में कैसे हमारे ब्रेन की रिकवरी होती है, कैसे क्लेंजिंग होती है. तो थॉट्स तो यहीं से आते हैं ना, जब हमारी नींद पूरी नहीं होती तो हम ज्यादा इरिटेबल होते हैं, हमारे थॉट्स थोड़े से अच्छे नहीं होते. तो इसलिए टाइम से सो जाओ, 10 बजे तक सो जाओ, काम नेक्स्ट डे, एक्सेप्ट ऑन इमरजेंसी ड्यूटी, उसमें नहीं सोना, नहीं तो प्रॉब्लम होगा. एंड फाइनली कंपनी कंटेंट एंड प्लेस. आप लोग यहां ज्ञान सरोवर में हैं, यहां नेगेटिव थॉट्स या वेस्ट थॉट्स आ रहे हैं आपको, अगर आ भी रहे होंगे तो बाहर की दुनिया से कम आ रहे होंगे. क्यों, आप तो वही हो. प्लेस, कंपनी कंटेंट अलग मिल रहा है, ये भी आपको असर करता है. कहते हैं मैन इज नोन बाय द कंपनी ही कीप्स, जिनके बीच में वो रहता है वो वैसा बनता जाता है. तो क्यों ना हम ऐसे लोगों को चुनें, ऐसी बातें करें जो अच्छी हैं, क्योंकि जो बोलेंगे जैसे लोगों के साथ रहेंगे वैसे हम भी बनेंगे. क्यों ना कंटेंट जो सोशल मीडिया पर हम देख रहे हैं वाइजली चूज करें. वी आर द एलीट क्लास, हम नहीं करेंगे तो और लोग कैसे करेंगे. एंड फाइनली आज से 100 साल पहले साइकेट्री में ज्यादा मेडिसिन नहीं होती थी, तो लोगों को सैनिटोरियम्स में हिल स्टेशन भेज दिया जाता था. आज हम कहते हैं मॉडर्न ल्यूनेटिक्स, जो सभी वाइसेस से परेशान है वो है मॉडर्न ल्यूनेटिक्स. पागल हैं लोग, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार में, स्ट्रेस में. तो उनके लिए मॉडर्न सैनिटोरियम्स बने, कौन से, आपके घर के पास ही हैं ब्रह्मा कुमारी सेंटर्स. तो वहां जाकर थोड़ा सा अपने आप को रिचार्ज करें। तो फाइनली टिप्स फॉर योर थॉट मैनेजमेंट, क्योंकि थॉट ही तो वो चीज है जो मुझे खुश रखती है, परेशान करती है। दुनिया कुछ भी हो, यहां खुश तो दुनिया अच्छी, यहां परेशान तो दुनिया खराब। वेक अप अर्ली, संकल्प करें 3:30 बजे ना उठें, उठें तो बहुत बढ़िया 4-5 के बीच में उठें, क्योंकि उस समय का टाइम पावरफुल एनवायरनमेंट होता है। डू एफर्मेशंस, आई एम अ पीसफुल सोल, आई एम अ लवफुल सोल, आई एम अ हैप्पी सोल। पॉजिटिव कंटेंट से अपने माइंड को भरे। रोज हम यहां पर 7-8 स्पिरिचुअल स्टडीज पढ़ते हैं जिनको मुरली कहते हैं, कृष्ण मुरली बजाता था। यहां पर जब हम वो सुनते हैं हमारा माइंड रिचार्ज हो जाता है। और फुल डे अटेंशन रखें क्या आ रहा है माइंड में, क्योंकि पुराने थॉट्स आएंगे लेकिन चेक करके चेंज करते जाएं। दिस इज नॉट गुड। अब आपको नॉलेज मिल गई ना, विच थॉट इज गुड, विच थॉट इज बैड। और फिर बी के सेंटर, ब्रह्म कुमारी सेंटर्स पर जाकर थोड़ा टाइम स्पेंड करें, और आपके घर के पास, दिस इज द मोस्ट ब्यूटिफुल थिंग, आपके घर के पास मिल जाएगा। और फाइनली स्लीप से पहले अपने थॉट्स को चेक करें, कैसे थॉट्स पूरे दिन में आए, एक प्लान बनाएं कि कैसे थॉट्स आने चाहिए, क्योंकि जो आप सोचकर सोएंगे वो पूरे दिन ब्रेन में कंसोलिडेट रात में होता रहेगा, और मॉर्निंग में आपको आइडियाज आएंगे। ये हम सब रोज करते हैं और डे बाय डे इम्प्रूवमेंट आता है। और फाइनली रेगुलर प्रैक्टिस। आज सुन लिया, बहुत अच्छा लगा, समझ में आ गया, नहीं होगा, फायरिंग करना पड़ेगा, रोज रोज वायरिंग। एक छोटी सी स्टोरी लाओत्सी की, चाइनीज मास्टर, एक बार वो एक प्रवचन दे रहे थे, बहुत सारे लोग बैठे थे, शांति होनी चाहिए, शांत रहना चाहिए, गुस्सा नहीं करना चाहिए, सबने कहा सत्य वचन महाराज। तो ठीक है, सब चले गए, लेकिन एक व्यक्ति अगले दिन आया, कहता है महाराज जी मुझे दोबारा समझाइए। समझा दिया, थर्ड डे फिर आ गया, तो डिसाइपल्स कहते हैं ये कैसा है, इतनी आसान सी बात नहीं समझ में आ रही। तो महाराज जी ने कहा कोई बात नहीं। वो व्यक्ति 21 दिन तक आया, ठीक है, 22वें दिन नहीं आया, तो सबने पूछा कि आज क्यों नहीं आए, तो कहता है अब मुझे समझ में आ गया। तब महाराज ने कहा पता है आपको, चेंज केवल इस व्यक्ति में आया है, बाकी सबने तो सिर्फ जाना और कुछ हद तक माना, लेकिन एग्जीक्यूट केवल ये व्यक्ति कर सका। 21 डेज मिनिमम लगते हैं आपको फायरिंग को वायरिंग में बदलने के लिए, एंड 3 मंथ टू मेक इट इनटू अ हैबिट। कहते भी है ना, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात है सिल पर परत निशान। एक कुएं की हार्ड पत्थर पर भी रस्सी निशान डाल देती है। तो सब कुछ संभव है अभ्यास। तो बुद्धि ज्यादा ना भी हो, अभ्यास छोड़ दिया तो नहीं होगा, ये मत कहना कि मुझसे होता नहीं है। अभ्यास 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 जो करेगा हो जाएगा। तो गोल क्या है, अगर स्पिरिचुअलिटी को आप एम्ब्रेस करना चाहते हो, नई दुनिया में जाना चाहते हो, वो नई दुनिया है पहले यहां पर गोल्डन बनाना, 0 negative waste thoughts। मैं ये नहीं कहता कल से हो जाएगा, इट विल टेक टाइम, दैट इज द प्रोसेस, बट दिस इज द अल्टीमेट एम। और कैसे थॉट्स हो, ओनली एलिवेटेड बेनिफिशियल फॉर ऑल थॉट्स। और यहां पर अगर एक ब्यूटीफुल वर्ल्ड बन गया तो बाहर सतयुग तो आ ही जाएगा। दैट इज द विजन ऑफ अ सतयुग, कि यहां पर आपका ब्यूटीफुल है और सबका यहां ब्यूटीफुल है, तो बाहर सतयुग आना ही आना है। थैंक यू, ओम शांति।
मेनी मेनी थैंक्स डॉक्टर स्वपन गुप्ता जी, आपने बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में थॉट मैनेजमेंट हमें एक्सप्लेन किया। अभी तक इन्फॉर्मेशन थी इवेंट मैनेजमेंट, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, हॉस्पिटल मैनेजमेंट, आज एक न्यू कॉन्सेप्ट हमने समझा थॉट मैनेजमेंट। और सेल्फ ट्रायड के आपने 3 फॉर्म्स जो हमारे बताए वो भी बहुत एनलाइटनिंग थे, एंड आई एम श्योर दैट हम सब इस प्रिंसिपल को फॉलो करेंगे, न्यूरोप्लास्टिसिटी को याद रखेंगे, न्यूरॉन्स दैट फायर टुगेदर वायर टुगेदर। और अब मैं रिक्वेस्ट करूंगी डॉक्टर अशोक मेहता जी को कि वो स्टेज पर आकर के हमारे चेयर पर्सन्स को फेलिसिटेट करेंगे शॉल पहनाकर। डॉक्टर अशोक मेहता जी।